अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्त यथा अपरम। तीन बातों का वर्णन आता है, बद्ध जीव तीन बातों के वश में है, काल कर्म और गुण। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिका। जिस व्यक्ति ने पंच महाभूत के इस शरीर को धारण किया है वो काल कर्म और गुण के अधीन है। कथम अन्यांस्तु गोपायेत, जब व्यक्ति स्वयं इन तीनों के नियंत्रण में है तो वो दूसरों को कैसे बचा सकता है? डूबता हुआ व्यक्ति क्या किसी दूसरे को बचा सकता है? काल कर्म और गुण से हम पूरी तरह बंधे हुए हैं, हमारे हाथ पैर और मुंह पूरी तरह बंधे हैं, और ऐसी बद्धावस्था में हम किसी दूसरे व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास करते हैं? ये भगवान की माया शक्ति का ही प्रभाव है। इस उदाहरण के लिए एक मैगजीन में एक कवर फोटोग्राफ आया था जिसमें दिखाया कि एक मेंढक है और वो मेंढक एक सर्प के मुंह के अंदर फंसा हुआ है। एक बहुत भयंकर विषैला सर्प है जिसने अपना मुंह खोला है और उस मुंह के अंदर ये मेंढक फंसा हुआ है। मेंढक का आधा शरीर सर्प के अंदर जा चुका है, उसका मुंह बाहर है, लेकिन मेंढक ने अपना मुंह खोला है और उसकी जिह्वा बाहर निकली है और वो एक दूसरे किसी मक्खी को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। उसकी जिह्वा में एक मक्खी है लेकिन वो स्वयं सर्प के मुंह में है। काल कर्म गुणाधीनो, प्रत्येक व्यक्ति काल के अधीन है, तो ऐसा मेंढक दूसरे को कैसे बचा सकता है? यदि मेंढक किसी को कहे कि अब मैं आपकी रक्षा करूंगा तो कोई स्वीकार करेगा? वो कहेगा अरे आप तो स्वयं सर्प के मुंह में हैं, आप दूसरों को कैसे बचाओगे? उसी तरह भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति काल कर्म और गुण के अधीन है। कथम अन्यांस्तु गोपायेत, इसीलिए हम दूसरों की रक्षा नहीं कर सकते। तो यहां पर भीष्म देव कहते हैं कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं ये सब काल के प्रभाव से है, इसीलिए मुनि अस्य कर हिचित राजन पुमान वेद विधित्सितम। क्योंकि कोई व्यक्ति जान नहीं सकता भगवान इस तरह की लीलाएं क्यों कर रहे हैं। मुह्यन्ति कवयोपि, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े भगवान के भक्त, बड़े बड़े देवतागण, ब्रह्मा और शिव इत्यादि भी भगवान की योजना को समझ नहीं पाते। तो हम और आप कौन है युधिष्ठिर महाराज कि भगवान की इस योजना को समझ सकें? इसीलिए आप शोक मत कीजिए, आप ये मत सोचिए कि इस सारी समस्या के मूल कारण आप हैं। इस तरह भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने का प्रयास किया और उसके पश्चात भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे कि अब मेरे जीवन की अंतिम घड़ी आ रही है, मैंने अपने जीवन में अनेक अनेक विषयों पर चर्चाएं की हैं, अनेक विषयों पर मैंने लोगों को अपना मत बताया है, युद्ध की भूमि में अनेक लोगों की मैंने रक्षा की है, लेकिन अब जब मेरी मृत्यु कुछ ही क्षणों में आने वाली है, मैं अपनी समस्त इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करना चाहता हूं। तब युधिष्ठिर महाराज ने नम्रता पूर्वक भीष्म देव से प्रश्न किया कि आप मुझे धर्म के विषय में कुछ बातें बताइए। यहां पर धर्मराज, धर्म के पुत्र युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव से प्रश्न कर रहे हैं, और उस समय भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को यथाशक्ति धर्म के विषय में काफी कुछ ज्ञान दिया। उसके पश्चात भीष्मदेव कहने लगे कि अब इस समय मैं अपने सारी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप पर केंद्रित करना चाहता हूं। वो भगवान जो कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मुझसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए, उन भगवान कृष्ण के ऊपर मैं अपना ध्यान लगाना चाहता हूं। युद्ध की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन लिया था कि मैं अर्जुन की रक्षा करूंगा, लेकिन भीष्मदेव के साथ उनकी एक बहुत सुंदर लीला हुई। भीष्मदेव ने उस दिन युद्ध में इस तरह से युद्ध किया कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आधे दिन में सारी पांडव सेना समाप्त हो जाएगी, और अंततः भीष्मदेव ने अपनी सारी शक्ति अर्जुन पर केंद्रित की। और यदि भगवान श्री कृष्ण उस समय नहीं होते तो शायद अर्जुन बच नहीं पाता। स्थिति ऐसी हो गई कि अर्जुन के हाथ से उसके बाण तक छूट गए। तब भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन लिया था कि मैं इस संपूर्ण युद्ध में कोई अस्त्र या शस्त्र अपने हाथों में नहीं उठाऊंगा, लेकिन उस समय अपने ही भक्त को विकट परिस्थिति में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही वचन को तोड़ने का प्रयास किया। अपने हाथ में रथ के एक पहिए को उठाया और पूरे क्रोध के साथ वो भीष्मदेव की ओर भागने लगे। भीष्मदेव अपने रथ पर खड़े होकर अपने पूज्य भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर बहुत आनंद ले रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर केश हवा से पीछे की ओर उड़ रहे थे, घोड़ों के टापों से उठी धूल उनके बालों को पूरी तरह आच्छादित कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण के माथे पर पसीनों के सुंदर बूंदें थीं और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर अलग अलग स्थानों पर भीष्म देव के मारे हुए बाण से निकले लाल रक्त भगवान के सौंदर्य पर चार चांद लगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के इस सौंदर्य को देखकर भीष्मदेव पूरी तरह मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में भयंकर क्रोध था और वीर रस का आनंद लेने के लिए भगवान भीष्मदेव पर आक्रमण करने जा रहे थे, और भीष्मदेव अपने मृत्यु के अंतिम क्षण में भगवान श्री कृष्ण के इस रूप पर ध्यान लगा रहे थे। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप पर ध्यान लगाते हुए भीष्मदेव ने, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अपना शरीर वहीं पर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाते लगाते श्रीला भीष्मदेव सीधे भगवत धाम पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप गुण लीला या नाम पर ध्यान केंद्रित करे, उस व्यक्ति को भगवान का धाम प्राप्त होना निश्चित है। इस तरह भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण के धाम को तुरंत पहुंच गए। कई बार लोग कहते हैं, विशेषकर जब प्रचार किया जाता है, जीवन का लक्ष्य है मृत्यु के समय भगवान के विषय में स्मरण करना, तो लोगों के मन में यह संशय उठता है, बस इतनी सी बात, मृत्यु के समय भगवान का नाम लो, मृत्यु के समय भगवान के विषय में सोचो और सीधा आप भगवत धाम पहुंच जाओगे। यदि बात इतनी आसान है तो मुझे जीवन भर भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। बस मृत्यु के समय एक बार हरि का नाम ले लूंगा तो सीधा भगवत धाम पहुंच जाऊंगा। आपने पहले क्यों नहीं बताया इतने दिन तक मैं भक्ति नहीं करता, मृत्यु के समय बस भगवान का नेम लेकर मैं वहां पहुंच जाता। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। जीवन भर हम जैसी चेतना रखेंगे उस प्रकार की भावना मृत्यु के समय हमारी होगी। भीष्मदेव जीवन भर हस्तिनापुर के अलग अलग राजनैतिक कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन उनकी चेतना क्या थी? उनकी चेतना थी भगवान श्री कृष्ण को मैं किस तरह संतुष्ट कर सकता हूं। ये जो मुझे सेवा दी गई है भगवान श्री कृष्ण की है, ये सत्ता मेरी नहीं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सौंपी है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मयो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशय। हे अर्जुन जीवन के हर क्षण में तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर मेरे विषय में चिंतन करो और युद्ध च और युद्ध करो। मयि अर्पिता मनोबुद्धिर इस तरह मेरे प्रति अपने मन और बुद्धि को अर्पित करते हुए अपना जीवन व्यापन करोगे, मामे वैशसी असंशय निस्संदेह आप मेरे धाम को पहुंचोगे। तो यहां पितामह भीष्म जीवन भर अलग अलग कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास था कि जो कुछ चल रहा है वो भगवान की काल शक्ति के प्रभाव से चल रहा है, भगवान के नियंत्रण से चल रहा है। भले ही मैं अपनी आंखों से भगवान को न देख सकूं, भले ही मैं हर परिस्थिति में भगवान को अपने समक्ष न पाऊं, लेकिन फिर भी ये सारी भगवान की ही योजना है। भीष्मदेव को ये पूरा विश्वास था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में निस्सहाय लेटे हुए भी उन्होंने एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा कि जीवन भर मैंने भगवान कृष्ण की सेवा की लेकिन मृत्यु के समय मुझे बाणों की शैया मिली, जीवन भर सेवा करने के लिए मुझे ये मिला। यदि आप कोई किसी की सेवा करते हो, खासकर कोई सरकार की नौकरी करे या कोई बिजनेस करे, तो हम सब की अपेक्षा होती है कि कम से कम रिटायरमेंट के बाद कोई प्रोविडेंट फंड मिले और कम से कम जीवन के अंत में कुछ सुख कुछ शांति मिले, हमारी सेवाओं की कोई स्तुति करे और हमने जो सेवा की है उसको लोग माने, उसका सम्मान हो। भीष्मदेव ने अपना जी जान लगा के सेवा किया, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें क्या प्राप्त हुआ? बाणों की शैया। बाणों की शैया पर वो लेटे हुए थे, लेकिन एक बार भी उनके मन में श्री कृष्ण के विरोध में कोई विचार नहीं आया। कभी उन्होंने भगवान को अपने हृदय में कोसा नहीं कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बाणों की शैया दी, इतनी सेवा करने के लिए मुझे यही मिला। नहीं, बल्कि युधिष्ठिर महाराज भी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे कि आप अपने भक्तों को ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं और खासकर मुझे और मेरे भाइयों को आपने ऐसी परिस्थितियों में डाला कि हमारे जीवन चरित्र को पढ़कर कोई आपकी भक्ति नहीं करेगा, कोई भी हमारे विषय में सुनेगा तो कृष्ण के नाम से भागेगा। क्योंकि एक और कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज सर्वोत्तम भक्तों में से हैं, पांडव सबसे ऊंचे भक्तों में से हैं, शुद्ध भक्त हैं, और अभी हम कनिष्ठ भक्त हैं, तब एक दिन शुद्ध भक्त बनेंगे अर्थात युधिष्ठिर और पांडवों के समान बनेंगे, तब हमको क्या मिलेगा? वही जो पांडवों को मिला। नहीं चाहिए कृष्ण की भक्ति हमें, नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे कि हे कृष्ण आपने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे खेल खेले हैं कि कोई हमारे विषय में पढ़ेगा या सुनेगा बहुत घबरा जाएगा, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को वैसी ही परीक्षा देते हैं जो वो झेल सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट हो, कोई विद्यार्थी हो, चौथी की कक्षा में हो तो चौथी की परीक्षा का पेपर आएगा। ऐसा कभी होता नहीं कि चौथी कक्षा वाले को दसवीं की परीक्षा का पेपर दिया जाए, ऐसा होता है नहीं। कोई भी विद्यार्थी हो उसे अपनी परीक्षा के विषय में चिंता तो रहती है, लेकिन ये चिंता नहीं रहती कि दसवीं की बोर्ड में बैठा हूं बारहवीं का पेपर ना जाए, ये चिंता तो नहीं रहती। प्रत्येक व्यक्ति को वही परीक्षा में उत्तीर्ण होना है जिसके लिए वो लायक हो, सक्षम हो, उसकी योग्यता हो। तो युधिष्ठिर महाराज और भीष्म देव भगवान श्री कृष्ण के इतने उत्तम भक्त थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी विशेष विशेष कृपा प्रदान की, और इसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को वो हर परिस्थिति में देख सके कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में है। कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, आप भगवान के विषय में इतनी चर्चाएं कर रहे हैं लेकिन भगवान तो हमें दिखते नहीं, जीवन में सुख पाने का इतना प्रयास करते हैं लेकिन दर दर पर हमें केवल विफलता का ही सामना करना पड़ता है, सुख चाहते हैं लेकिन न चाहते हुए भी पिट जाते हैं, ऐसा क्यों? यदि भगवान कृपालु हैं तो हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? भगवान इतने ही कृपालु हैं तो इस तरह विकट परिस्थिति क्यों देते हैं? क्या वास्तव में भगवान सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं या कभी कभी परिस्थिति उनके नियंत्रण से बाहर निकल जाती है? युधिष्ठिर और भीष्म के जीवन को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कम से कम इतनी भीषण परीक्षाएं तो हमें नहीं देनी जो भीष्म देव और युधिष्ठिर महाराज को देखने की। एक बार एक रूसी साम्यवाद कम्युनिस्ट भारत में घूमने के लिए आए, और भारत में अलग अलग स्थानों में घूमने के पश्चात वो भारत से बाहर वापस जा रहे थे। दिल्ली के हवाई अड्डे पर उनको एक भारतीय मिला, तो भारतवासी ने उससे पूछा कि आप रूस से आए हो, आप पहली बार भारत में आए हो, आपका कैसा अनुभव रहा? आपको पता है कि कम्युनिस्ट या रूसी जो होते हैं वैसे नास्तिक होते हैं। उस समय की बात थी जब साम्यवाद काफी प्रचलित था, तो रूसी ने कहा कि भारत में आने से पहले मैं नास्तिक था, लेकिन भारत में आने के पश्चात, भारत में अलग अलग जगह घूमने के बाद मैं आस्तिक हो गया हूं। तो भारतवासी ने पूछा, आपका ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? कौन से साधु से मिले, कौन से संत से मिले, कौन से तीर्थ स्थान पर गए कि इतना परिवर्तन हो गया? ऐसी क्या बात थी, जरा हमें भी बताओ, मैं तो धीरे धीरे भारत में रहकर भी नास्तिक बन रहा हूं। तो कम्युनिस्ट ने कहा कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, हुआ यूं कि भारत में मैं अलग अलग सरकारी दफ्तरों में घूम रहा था और मैंने देखा कि सरकारी दफ्तरों में लोग गप्पे मार रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई कमेंट्री सुन रहा है, वैसे कोई विशेष काम नहीं कर रहा फिर भी सरकार का काम चल रहा है, अर्थात भगवान के सिवा कौन इस देश को चला सकता है। ये देखकर मैं समझ गया कि अवश्य ही भगवान इसके पीछे नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन भारत में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे इस तरह भगवान के नियंत्रण के निष्कर्ष पर आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतने सारे धर्म शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं और इतने सारे भक्तों के चरित्र हमारे पास हैं जिनको पढ़कर हम जान सकते हैं कि चाहे जीवन में सुख हो या दुख हो, अंततः भगवान श्री कृष्ण ही हर प्रकार से हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, सुख में या दुख में। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व युद्धाय कृतनिश्चय। भगवद्गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं, सुख और दुख में समान भावना रखते हुए हे अर्जुन युद्ध करो, लेकिन विशेष ध्यान ये रहे कि अपनी सेवा के अंततम लक्ष्य पर हमेशा ध्यान रहे। 24 घंटे सेवा करते रहो, लेकिन हमेशा सतत सेवा के लक्ष्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विषय में स्मरण रहे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे गांव में स्त्रियां जब नदी से पानी लेने जाती हैं तो उनके हाथ में मटकी होती है, घड़ा, दोनों हाथों में दो मटकी होती है, सर पर 3 मटकियां होती हैं, एक हाथ में मटकी, सर पर 3 मटकी और बाएं हाथ में बच्चा। लेकिन कोई काम करना हो तो भी वो कर लेती हैं, बच्चे को नीचे रख देती हैं, कुछ दूसरा कुछ घड़ा उठा लेती हैं, या किसी के साथ कुछ काम हो तो एक हाथ से काम कर लेती हैं, ऊपर उठती हैं, नीचे बैठती हैं, दाएं मुड़ती हैं, बाएं मुड़ती हैं, लेकिन सर पर हमेशा वो 3 मटके बैलेंस रहते हैं। अर्थात अपने सब कार्यों को करते हुए भी वो अपने सर के ऊपर मटकों के बैलेंस को नहीं खोते, उनके संयम को नहीं खोते। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हमें भी इसी तरह हर प्रकार के कार्य को करते हुए भी 24 घंटे हर क्षण भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करते रहना है, स्मरण करते रहना है, उनकी कथाओं का श्रवण और उनके हरिनाम का कीर्तन करना है, जिससे हम मृत्यु के समय जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मदेक बंधो मद संगे मद गुरो मद महादन मद निस्तारक महाभाग्य मदानंद नमोस्तुते। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं श्रीमद भागवत ही मेरा एकमात्र मित्र है। मदेक बंधो मत संगीन श्रीमद् भागवत ही मेरा संगी है। मत गुरो मत महाधना, श्रीमद् भागवत ही मेरा गुरु है। महाधना, श्रीमद् भागवत ही मेरा असली धन है। मद निस्तारक, श्रीमद् भागवत ही मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल सकता है। मद आनंद नमोस्तुते, और श्रीमद् भागवत ही मेरे आनंद का असली कारण है। जब श्रील सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को सबसे पहले देखा तो उनके मुख कमलों से ये श्लोक निकला, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही हमारे जीवन में असली सुख, असली शांति और असली सफलता प्रदान कर सकता है। भागवत में वर्णन आता है, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, यदुत्तम श्लोक यशो नुगीयते। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, श्रीमद् भागवत में इतनी सुंदर रुचिर कथाओं का वर्णन है। नवम नवम, हर कथा में एक नए स्वाद का अनुभव होता है। भौतिक जगत में व्यक्ति हमेशा नए नए रसों का आस्वादन करना चाहता है, लेकिन एक ही भागवतम में अनेक प्रकार के रस हैं जो सभी को संतुष्ट कर सकता है। तदेव शश्वम मनसो महोत्सवम, और श्रीमद् भागवत की कथा जो सुनता है उसके मन में नित्य शश्वत रूप से एक महोत्सव होता है। भागवत का श्रवण अर्थात मन के लिए एक उत्सव। हम सभी उत्सव में बड़ा आनंद लेते हैं, क्योंकि उत्सव का अर्थ है नृत्य, गीत, भोजन इत्यादि। उत्सव अर्थात आनंद। तो तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम, श्रीमद् भागवत का जो श्रवण करे मन में उसके लिए नित्य शाश्वत महोत्सव है। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, और यदि हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो जो व्यक्ति इस भव सागर के दुखों में डूबा हुआ है, श्रीमद् भागवत सूर्य के समान है और श्रीमद् भागवत की तपती हुई किरणें इस शोक के सागर को पूर्ण रूप से सुखाकर हमारे हृदय में असली आनंद की अनुभूति करा सकती हैं। तदेव शोकार्णव शोषणम ऋणाम, यद उत्तम श्लोक यशोनुगीयते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तो इस तरह श्रीमद् भागवत के श्रवण और कीर्तन में अनेक अनेक लाभ हैं। तो प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के ही उस अध्याय पर आते हैं जहां पर परीक्षित महाराज के जन्म का वर्णन है। कल हमने चर्चा की कि किस तरह परीक्षित महाराज के ऊपर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ, और जब अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज पर आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण वहां पर स्वयं उत्तीर्ण हुए, और वहां अवतीर्ण होकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं परीक्षित महाराज को बचाया। उसके पश्चात जब आसमान में सारे ग्रह नक्षत्र ठीक प्रकार से सुशोभित थे तब परीक्षित महाराज का ऐसे शुभ अवसर पर जन्म हुआ। जब किसी महान व्यक्ति का जन्म होता है तो सारे ग्रह नक्षत्र उचित प्रकार से अपने आप को संवार लेते हैं, और ऐसी स्थिति को कहते हैं जयंती। जयंती अर्थात जब ग्रह नक्षत्र इस प्रकार की रचना में हो जो सबसे उत्तम हो। और जैसे ही व्यक्ति का बच्चे का जन्म होता है उसके जन्म के समय के अनुसार उसका जातक या जन्म पत्री बनाया जाता है, उसी तरह परीक्षित महाराज की जन्म पत्री भी तैयार की गई और उसमें युधिष्ठिर महाराज ने अनेक महान ब्राह्मणों को वहां निमंत्रित किया और ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के पश्चात उनसे प्रश्न किया कि परीक्षित महाराज के गुणों के विषय में कुछ व्याख्या कीजिए। तो ब्राह्मण कहने लगे कि ये परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, परीक्षित महाराज तस्मात नामना विष्णुरात इति लोके भविष्यति, निसंदेहो महाभाग महाभागवतो महान। ये क्या कोई साधारण व्यक्ति है? नहीं, तस्मात नामना विष्णुरात, अर्थात जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने बचाया है, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इति लोके भविष्यति, इस तरह आम लोग परीक्षित महाराज को पुकारेंगे विष्णुरात कहके। न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान, इसीलिए है युधिष्ठिर महाराज आप इस बात को स्पष्ट रूप से जान लो कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके परिवार में ऐसे महान भक्त का जन्म हुआ है, जन्म से ही वो महाभागवत है। भक्ति में भक्तों के तीन स्तर होते हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। परीक्षित महाराज इतने महान भक्त थे कि बचपन से ही महाभागवत। तो परीक्षित महाराज के जन्म के पश्चात सारे ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज को बधाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है और विशेष रूप से जब किसी भक्त का जन्म होता है तो उनके परिवार के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं आंकी जा सकती। ऐसा परिवार सबसे अधिक सौभाग्यशाली है जिस परिवार में भक्तों ने जन्म लिया है, और उस परिवार के क्या कहने जहां परीक्षित महाराज ने जन्म लिया। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, नृत्यन्ति पितरः सर्वे, नृत्यन्ति च पितामह मद्वंशे वैष्णवो जातो समेत्राता भविष्यति। जब कभी किसी परिवार में भक्त का जन्म होता है तब नृत्यन्ति पितरः सर्वे, उस परिवार के जितने भी पूर्वज हैं जो पितर लोक में हैं, नृत्यन्ति वो जहां जहां भी हैं वो सब नाचते हैं, जितने भी पूर्वज हैं अपने अपने लोकों में नृत्य करने लगते हैं। नृत्यन्ति च पितामह, और जितने पितामह हैं, दादा परदादा हैं, वो सब जोर जोर से कीर्तन करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, आनंद करने लगते हैं। क्यों? आनंद की ऐसी क्या बात है? मदवंशे वैष्णवो जातो, मेरे वंश में वैष्णव ने जन्म लिया है, और क्योंकि मेरे परिवार में वैष्णव आ गया है, समेत्राता भविष्यति, वो मुझे सब पापों से मुक्त करेगा, वो मुझे इस नरक से बचाएगा। इसीलिए वो सारे पितर और पितामह आनंद में नृत्य करने लगते हैं। इसीलिए कई बार जब व्यक्ति भक्ति में लगता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके परिवार के सदस्य संतुष्ट नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, क्रोध करते हैं कि भक्ति क्यों कर रहा है, वो नाचते नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि आप ये क्या कह रहे हैं, नृत्यन्ति पितरः पितामह, लेकिन घर में तो हमें डांटे पड़ रही हैं, लोग फटकार रहे हैं कि प्रोग्राम से इतनी देर से क्यों आते हो, क्या दिन रात बस हरिनाम कीर्तन ही करना है, जीवन में और कोई लक्ष्य है कि नहीं। लेकिन समझो, यदि किसी के परिवार में कोई व्यक्ति भक्ति में रुचि लेता है तो उस परिवार के, इस तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, 100 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। और ये कलयुग है, भविष्य में हमारे बच्चे कैसे होंगे कोई भरोसा नहीं, इसीलिए हम उन पर ये उत्तरदायित्व नहीं छोड़ सकते कि वो हमें बचाएंगे, हमें स्वयं भक्त बनना है। कई बार लोग इस श्लोक को सुनकर कहते हैं, समेत राता, ठीक है चलो मैं आनंद करता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जब भक्ति करेगा तब मुझे बचाएगा, तो इससे मुझे दोनों लाभ मिलेगा, मैं आनंद करूंगा और फिर बच भी जाऊंगा। लेकिन कलयुग में इस तरह की बात नहीं चलती, क्योंकि हमें पता नहीं भविष्य में क्या होगा। इसीलिए जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, सारे ब्राह्मण आनंद मना रहे थे और युधिष्ठिर का उत्साह बढ़ा रहे थे। युधिष्ठिर को चिंता लगी थी, जैसे हर माता पिता को लगती है कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका भविष्य क्या होगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में पटु ब्राह्मणों को उन्होंने निमंत्रित किया था। कई बार लोग पूछते हैं कि ज्योतिष शास्त्र सही है अथवा गलत है, क्या हमें ज्योतिषियों पर विश्वास रखना चाहिए, ये क्या केवल एक पाखंड है, ढोंग है, कि वास्तव में इसके पीछे कोई सत्य है। वास्तव में ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ये नक्षत्रों और ग्रहों की भाषा है, और जो उस भाषा को समझ सकता है वो स्पष्ट रूप से हमें बात कह सकता है। लेकिन जब एक बार व्यक्ति भक्ति में लग जाता है, उसके पश्चात ज्योतिष इत्यादि में विश्वास रखे न रखे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं गिरता। एक बार वृंदावन में प्रभुपाद के एक शिष्य ने अपने गले में बहुत बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं डालकर वो आए। प्रभुपाद पूछने लगे, कहां से आ रहे हो? बोले, ज्योतिषी के पास गया था। बोले, ज्योतिषी के पास क्यों गए थे? तो ज्योतिषी ने कहा कि राहु और केतु का जो मेरा ग्रह है वो शुभ नहीं है, और इसीलिए मेरे जीवन में कोई समस्याएं होने वाली हैं, तो उसे दूर भगाने के लिए उसने मुझे ये मालाएं दी हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, अरे तुम तो भगवान कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण चाहे तो एक लात मारकर हजारों राहु और केतुओं को दूर भगा सकते हैं। तो कृष्ण की भक्ति को छोड़कर इन सभी अन्य शास्त्रों में इतने अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम कीर्तन करते हैं और तालियां बजाते हैं तो हाथ की सारी रेखाएं बदल जाती हैं, तो फिर हर क्षण किसी ज्योतिषी को दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि ज्योतिष शास्त्र में इतना ध्यान न दें, बल्कि केवल श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के आधार पर अपने जीवन को संभालें, क्योंकि गीता और भागवत में अंततः यही भविष्यवाणी है कि देखो बेटा, मृत्यु आने वाली है, संभाल लो। इससे अधिक और कोई भविष्यवाणी उचित नहीं, और इसीलिए भागवत में केवल इसी प्रश्न के ऊपर बार बार चर्चाएं होती हैं कि मृत्यु क्या है। तो परीक्षित महाराज के गुणों का वर्णन करने लगे सारे ब्राह्मण, कहने लगे कि श्री रामचंद्र के समान उदार होंगे, बलि महाराज के समान वचन के पक्के होंगे, शिवी महाराज की तरह ये दानी होंगे, पृथ्वी के समान सहनशील, माता पिता के समान कृपालु, हिमालय की तरह शक्तिशाली और अचल, और शेर की तरह अपने सभी शत्रुओं का संहार करने की शक्ति रखेंगे। पितामह समस्साम्य प्रसादे गिरिशोपमाश्रय सर्वभूतानाम यथा देव रमाश्रय। और इनकी एक और विशेषता ये होगी, पितामह समस्साम्य, ब्रह्मा जी पितामह के दो तात्पर्य दिए हैं यहाँ पर। पितामह समह साम्ये, समह अर्थात मानसिक संतुलन, ये कभी किसी भी परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोएंगे। जैसे युधिष्ठिर और ब्रह्मा की तरह, ये बहुत ही बढ़िया बात बताई है। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में भी ऐसी कई अनेक घटनाएं घटी जिसके फलस्वरूप वो अपना मानसिक संतुलन खो सकते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कभी अपने मानसिक संतुलन के ऊपर नियंत्रण नहीं खोया। और दूसरे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी 14 लोकों के सर्वप्रथम इंजीनियर हैं, और मानसिक संतुलन का तात्पर्य यह है कि यदि कोई नेता अपनी प्रजा की सेवा करता है तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जिसके लिए वो अपना जी जान से सेवा करता है वही सबसे पहले उसे बुरा भला कहता है। जो लोग मैनेजमेंट में हैं, वो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जिसके लिए आप सेवा करो, जिसके लिए आप बुरी तरह मेहनत करो, परिश्रम करो, वही सबसे पहले आकर उंगली दिखाते हैं, कहते हैं ये तुमने ठीक नहीं किया, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो जब हम किसी एक क्षेत्र में नेता बनने का प्रयास करें या कुछ लोगों के अपने अधीन रखें, तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक संतुलन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चाहे इस भौतिक जगत में हम कितना ही अव्वल दर्जे का काम क्यों न करें, लोग हमेशा हमारे अंदर दोष ढूंढेंगे। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने 14 लोकों में 84 लाख योनियों की इतनी सुंदर रचना कर दी, ऐसी ऐसी योनियों की रचना कर दी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 14 लोकों में पंच महाभूत का इतना सुंदर समावेश है, लेकिन इतना सब कुछ करने के पश्चात भी ब्रह्मा जी भी आलोचना से परे नहीं है। वो क्यों? क्योंकि गोपियां कहती हैं ब्रह्मा जी को, ये तुमने आंखों के ऊपर ये मांस का टुकड़ा क्यों लगाया? क्योंकि तुमने ये लगा दिया इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण को एक टक दर्शन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का हम 24 घंटे हर क्षण दर्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में पलक झपकती है, इसलिए कृष्ण के दर्शन नहीं होते, इसके लिए दोष तुम्हारा है। सबसे उत्तम भक्त, सबसे उत्तम मैनेजर या सबसे उत्तम इंजीनियर को दोष दे रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, मानसिक संतुलन होना बहुत आवश्यक है, विशेषकर किसी नेता को या राजा को। और परीक्षित महाराज के अंदर ये बातें पूर्ण रूप से थी। तो इस तरह परीक्षित महाराज के अनेक गुणों का वर्णन करने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने इन ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दक्षिणा प्रदान की और उन्हें संतुष्ट किया। उसके पश्चात ये सारे ब्राह्मण वहां से चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने और अनेक अश्वमेध यज्ञों की तैयारियां आरंभ कर दी। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि किस तरह युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडवों ने संन्यास ग्रहण किया, अपने राज्य को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के विरह को सहन न करते हुए उन्होंने अकेले एक एक करके हिमालय की ओर निकल गए। और कहा जाता है अंततः प्रत्येक पांडव ने अपने उसी देह में भगवान के धाम को प्राप्त किया। उसके पश्चात परीक्षित महाराज को राजा नियुक्त किया गया। परीक्षित महाराज ने विवाह किया इरावती से और उसके 4 पुत्र हुए। परीक्षित महाराज ने अपने राज्य के उत्तरदायित्व को बहुत अच्छी तरह संभाला। एक बार परीक्षित महाराज ने अपने रथ पर सवार होकर पूरे विश्व के भ्रमण करने की योजना बनाई। परीक्षित महाराज ने देखा कि धीरे धीरे उनके राज्य में कली का प्रभाव आ रहा है, और ये देखकर परीक्षित महाराज घबरा गए। परीक्षित महाराज ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, कली का प्रभाव बढ़ने से पहले मुझे इसे नियंत्रित करना होगा। और ऐसा सोचकर अपने हाथ में अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित अपने रथ पर सवार होकर परीक्षित महाराज पूरे विश्व को भ्रमण करने चले गए। बताया जाता है कि किसी राजा का यह उत्तरदायित्व होता है कि अपने प्रजा की रक्षा करे, लेकिन किस से रक्षा करे? उनके आध्यात्मिक पतन होने से उनकी रक्षा करे। राजा को स्वयं अलग अलग गुणों में संपन्न होना चाहिए और साथ साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी प्रजा की भी पूर्ण रूप से रक्षा करनी चाहिए। आधुनिक समाज में हम देख रहे हैं कि प्रजातंत्र के अधीन जितने भी नेतागण आ रहे हैं वो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहे क्योंकि वो स्वयं शक्तिशाली नहीं हैं। लेकिन यदि हम अपनी प्रजा की रक्षा चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है राजा का। जैसी राजा वैसी प्रजा। लेकिन जब से प्रजातंत्र आरंभ हुआ है हम नेताओं को बुरा भला कहते हैं, लेकिन वास्तव में उनका क्या दोष है? नेता तो हम में से एक ही है। तो जब तक प्रजा की चेतना में सुधार न हो तब तक जो उनमें नेता आए उसकी भी चेतना कैसी होगी? तो इसीलिए जैसी राजा वैसी प्रजा। एक बार एक राजा का एक मंत्री था। राजा को बहुत प्रिय था लेकिन बाकी मंत्री उसे पसंद नहीं करते थे और वो इस प्रयास